आज हम अपना जन्नत में मेरी मजलिसे इसकी दूसरी किस्त देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सीरीज इसलिए है ताकि हमारे दिल में जन्नत का शौक पैदा हो और हम दुनिया में रहते हुए कहीं ख्यालों में उसको थोड़ा सा तसव्वुर कर सकें, वो कि हम जितना भी तसव्वुर कर लें हम वहाँ की नेमतों को कभी भी जान नहीं सकते उनकी असलियत के, वाकई वो हैं कैसी। मगर जितना भी हमें कुरान और हदीस से मिलता है उसकी बेस के ऊपर ये सीरीज तैयार की गई है। चलते हैं सीरीज की तरफ। मेरी खादमाएं तरह तरह के हीरे जवाहरात से जड़े हुए खूबसूरत थालों में बेशकीमत जेवरात और लिबास लेकर हाजिर हो गई। ये सब क्या मैं पहनूंगी? मुझे जेवर का तो हमेशा से बड़ा शौक था, मगर इतने सारे कपड़े, एक एक जोड़े को मैं शौक से खोल के देखने लगी। इतने खूबसूरत, ये सब मेरे लिए हैं? मेरा दिल कर रहा है मैं सब पहन लूं। एक खादिमा आगे बढ़ के बोली, ये सब आप ही पहनेंगी और एक ही वक्त में आप कई कई लिबास पहन सकती हैं। मैंने जल्दी जल्दी वो कपड़े ट्राई करना शुरू कर दिए। क्या बेहतरीन फिटिंग थी, यूं लगता था किसी ने खास तौर पे मेरे लिए ही तैयार किए हैं। मैं सामने लगे हुए दराज कद शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गई। ये क्या, ये मैं हूं इतनी हसीन? ऐसी तो मैं कभी जवानी में भी नहीं थी। मैं तो अपनी जवानी से भी ज्यादा हसीन हो गई। खिला हुआ रंग रूप, चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं, कोई झुरियां नहीं, कोई हलके नहीं। जब मैं फौत हुई थी तब तो मेरी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बीमारी ने मेरा रहा सहा रंग भी मांद कर दिया था। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मेरे सामने यूं लगता था कोई इंसान नहीं, परी खड़ी हुई है। दुबला पतला जिस्म, मेरा मोटापा कहाँ गया जो जवानी में हुआ करता था? और मेरा वो कमजोर जिस्म कहाँ गया जो फौत होने से पहले था? मुझे कितना शौक था ना हसीन नजर आने का, इसके लिए मैंने कितने जतन किए थे। मगर जवानी में मोटापे ने तंग करे रखा और उधेड़ उम्र में बीमारी ने मेरा कुछ नहीं छोड़ा। अब ये ऐसा खूबसूरत मुतवाजिन जिस्म कहाँ से आ गया? मेरी खादमा आगे बढ़ी और कहने लगी, ये जन्नत है, यहाँ सब जवान है, सब हसीन है, ना कोई हैज, ना कोई निफास, ना कोई हसद, ना कोई गुस्सा, ना कोई कीना। मैं बेख्तियार होके अपने नर्म और मुलायम गालों पे हाथ फेरने लगी। मेरा हुसन ऐसा था कि अगर कोई लम्हा भर के लिए भी देख लेता तो शायद मर जाता। दुनिया में अगर मैं जहां का हूं तो मगरिब और मशरिक सब रोशन हो जाएं, मेरी खुशबू ऐसी थी कि दुनिया में चली जाऊं तो सारी दुनिया रोशन, सारी दुनिया खुशबूदार हो जाए। मेकअप की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी, मैं इसके बगैर ही इतनी हसीन लग रही थी। मुझे मेरा जी ही नहीं भर रहा था खुद को देखने से। दुनिया में तो हाल ये हो गया था कि आखिर में तो खुद को शीशे में देखने का भी जी नहीं चाहता था। और आज ये है कि दुनिया की हसीन तरीन औरत भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि जो कभी किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो। मेरे करीब खड़ी खादिमा ने मेरे शौक को देखा और बोली, ये हुसन आपकी नमाजों, आपके रोजों और आपकी इबादात की वजह से आपको मिला है। इसकी वजह से आप जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हसीन बना दी गई हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैं रुख मोड़ मोड़ के खुद को शीशे में देख रही थी। यूं लगता था मेरे रब ने मुझे नया बनाया है। वाकई मैं वो नहीं, मैं दोबारा पैदा की गई हूं। और मैं मेरी जुबान बार बार अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात कहे जा रही थी। बेइख्तियार मुंह से यही निकल रहा था, ये अल्लाह तू कितना कदरदान है। मुझे पता होता तो मैं इससे भी ज्यादा शौक से तेरी इबादत करती, मैं और ज्यादा तेरी मोहब्बत में तेरी इताअत करती। मैंने क्यों कोई एक दिन भी कमी की? मैं तो इस काबिल भी ना थी जो कुछ तूने मुझे अता कर दिया। मेरे टूटे फूटे अमाल पर ही मैं इनको और अच्छा करती। अगर मुझे पता होता तू वाकई कितना कदरदान है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने रब के आगे सजदा रेज हो जाऊं। मेरी खादिमा भांप गई और बोली, यहां कोई सजदा नहीं, ये दुनिया नहीं है। ना यहाँ सजदे, ना यहाँ नमाजें, ना यहाँ रोजे, यहाँ सिर्फ ऐश ही ऐश है। मैंने हैरान होके कहा, अच्छा सुनो, कहीं मेरा ये हुस्न मान ना पड़ जाए। क्या करूं कि मैं बस हमेशा ऐसी ही रहूं, कभी मेरे चेहरे पर कोई बदनुमाई ना आए, हमेशा इतना ही जबरदस्त रहे, परफेक्ट रहे। इससे पहले कि मैं उससे कोई जवाब पाती, एक आवाज हमारे कानों में पड़ी। बाहर कोई ऐलान हो रहा था। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। मेरी सारी खादमाएं मेरे पीछे पीछे हाजिर बाश चलती भी आ गई। वो तो यूं लगता था कि एक पूरी टीम मेरे हुक्म की मुंतजर है कि इधर मैं मुंह से कुछ निकालूं तो वो फौरन पूरा करें। मैं खिड़की के करीब आके खड़ी हो गई। बाहर एक मशहूर कुन खुशबू थी। ये वही खुशबू थी जो जन्नत में दाखिल होने से पहले कई साल की मसाफत से आ रही थी। मैंने ऐसी खुशबू कभी ना सूंघी थी। ऐलान करने वाला एक ऐलान कर रहा था। वो कह रहा था, ऐ जन्नतियों, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, हाय अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है बीमारी क्या होती है। मैंने बीमारी के दिन देखे हैं, बहुत तकलीफ देते। दुनिया की हर चीज बेमाने होके रह जाती है। ऐलान करने वाले ने दूसरा ऐलान किया, ऐ जन्नतियों, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। तब मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अच्छा कभी मरेंगे नहीं, कोई भी यहां मरेगा नहीं, इसका मतलब यहां पे कोई जनाजा नहीं होगा, कोई कब्र नहीं होगी, किसी को मौत नहीं आएगी तो कोई जुदाई भी नहीं होगी। मेरे शौहर की जब वफात हुई थी तो मुझे याद है मैं कितना रोई थी। तीन छोटे छोटे बच्चे थे और शौहर का साया सर से उठ गया। जिंदगी तारीख हो गई थी। इंसान मौत के सामने कितना बेबस हो जाता है। कैसे अपने प्यारों से ना चाहते हुए भी हमेशा के लिए जुदा कर देती है मौत। ये कैसी प्यारी जगह है जहां मौत नहीं, जहां कोई किसी के गम में आंसू नहीं बहाएगा, जहां कोई जुदाई नहीं होगी, जहां हमेशा अपने प्यारों का साथ रहेगा। ऐलान करने वाले ने एक और ऐलान भी किया, जन्नती हो, यहां हमेशा तुम जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ये सुनकर मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, हाय वाकई बुढ़ापा, वो तो एक अजियत है। मैंने अपनी अम्मी जान को बुढ़ापे में देखा था, वो कैसे बिस्तर पे लग के रह गई थी, जिस्म लागर हो गया था, अकल जाती रही थी। बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी से कम नहीं। और इसका मतलब ये भी है कि मेरा हुस्न भी हमेशा इसी तरह रहेगा, मैं भी जवान रहूंगी और किसी मेकअप की जरूरत नहीं खुद को जवान रखने के लिए, किसी क्रीम लोशन फेशियल की जरूरत नहीं। ऐलान करने वाले ने फिर कहा, ऐ जन्नतियों, तुम हमेशा मजे करोगे, तुम कभी गमगीन नहीं होगे। उसकी आखिरी बात ने तो मेरा दिल ही खींच लिया। अच्छा वाकई क्या यहाँ कभी गम नहीं होगा? मुझे याद आया दुनिया में मैंने बड़े दुख झेले, बहुत गम काटे, बहुत अरसा रोती रही। गम भी इंसान को खा जाता है, उसको मार देता है। वो जन्नत जैसी जमीन पर भी हो तो गम उसको किसी काबिल नहीं छोड़ता। उसके पास दुनिया जहान की आसाइशें भी हो मगर अगर दिल में दुख हो तो जिंदगी भारी हो जाती है। इंसान जिंदा हो के भी एक लाश से कम नहीं होता। ये जगह कैसी प्यारी है, मुझे यहां से कभी नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मुझे यहां से कोई निकालेगा तो नहीं? मेरे मुंह से झट से निकला। मेरी खादिमा बोली, क्या आप नहीं जानती जन्नत वालों के बारे में कहा गया, खालिदीन फीहा अबदा। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूं, मैंने ये पढ़ा है, बस चाहती हूं कि कोई यकीन दिला दे। तुम क्या जानो कि कोई प्यारी चीज जब मुश्किलों से मिलती है तो इंसान को यही धड़का लगा रहता है कि कहीं छिन ना जाए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब हमेशा यहां रहना। वो बोली, हाँ ये जन्नत है, यहां आप बेफिक्र हो जाइए, यहां से आपको कोई ना निकालेगा। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैं अब जन्नत में आके अपने सारे गम भूल गई थी। अभी तो शायद एक दिन भी नहीं गुजरा, लेकिन मेरे रब ने मुझे इतना नवाज दिया कि मुझे तो लगता भी नहीं कि मैंने कभी कोई गम देखा। वो जिंदगी भर की तकलीफें, बीमारियां, शौहर की वफात का गम, यतीम बच्चों की परवरिश का बोझ, फिर दूसरे शौहर के मजालिम, मुझे अब तो कुछ भी याद नहीं रहा। मैंने अपनी खादिमाओं से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं जाकर दुनिया में लोगों को बता दूं कि लोगों इस घर के लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो, ये तो बहुत ही प्यारी जगह है, इस जैसी जगह तो कोई है ही नहीं, खुदा की कसम कोई जगह ऐसी नहीं। तुम छोड़ो बेकार के मसलों को, वो भी कोई मसले थे जिनके लिए रोते थे, अपना वक्त लगाते थे, दिलो दिमाग उसमें लगाया था, सलाहियतें सब खर्च कर दी थी, जवानियां खपा दी थी। अरे अगर जीना है तो इसके लिए जियो और मरना है तो इसके लिए मरो, वक्त लगाना है तो इसके लिए लगाओ, मेहनत करनी है तो इस जगह के लिए करो। मेरी खादमाएं सब की सब खिलखिला के हंसती, उनके हंसने से यूं लगा सारा माहौल हंस दिया। कहने लगी, अब कहाँ वो दिन दुनिया रही और कहाँ उसकी बातें, वो तो कब की गुजर गई, वो सब तो खत्म हो गया, बिसात लपेट दी गई। मैंने एक ठंडी आह भरी और बोली, हाँ मैं जानती हूं मगर मेरा जी चाहता है कहीं मैं वक्त में पीछे चली जाऊं तो सारी दुनिया को चीख चीख के बताऊं कि इसके लिए तुमको कुछ भी करना पड़े तो कर लेना, मगर इसको हाथ से जाने ना देना। किसी कीमत पे अपनी जन्नत को ना छोड़ना। वो दीवाने तो दुनिया को ही जन्नत बना के बैठ गए थे, उसी को जन्नत बनाने के चक्करों में दिन और रात गुजार रहे थे और इस जन्नत को भुला दिया था। यही कह के कि अमल करना बड़ा मुश्किल है, अमल कैसे करें। वफी ज़ालिक फलिया तनाफस अल-मुतनाफिसून, हालांकि मुकाबला करने वालों को तो इसके लिए मुकाबला करना चाहिए। मेरी खादमा बोली, अच्छा आइए इधर देखिए, आपके लिए एक से बढ़ के एक कपड़ा मौजूद है, ये पहनी है। मैं खुशी से उठी और दूसरा जोड़ा इसके ऊपर ही पहन लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह मैंने 70 जोड़े एक के ऊपर एक चढ़ा लिए। शौक ही इतना था, कोई जोड़ा भी छोड़ने को जी नहीं करता था। लेकिन ना तो मुझे इन कपड़ों का कोई बोझ महसूस हुआ, ना ही एक जोड़े ने दूसरे को ढांक दिया, बल्कि हर जोड़े के अंदर से दूसरा नजर आ रहा था। हर जोड़ा इतना उम्दा और नफीस था और ऐसा हल्का था कि जोड़ों के अंदर से भी मेरी पिंडली का गूदा नजर आ रहा था। मेरी खादमाएं आगे बढ़ी और मेरा दुपट्टा मेरे ऊपर डाला। वो दुपट्टे को टांग रही थी और मैं इसकी खूबसूरती में गुम हो गई। क्या कहने थे, ऐसा हसीन, इस पे काम इतना बेशकीमत था कि शायद दुनिया जहान की दौलत भी दे दी जाए तो ये एक दुपट्टा खरीदा नहीं जा सकता। मैंने हैरत से अपनी खादमा से पूछा, ये लिबास किस चीज का बना हुआ है? बोली, खजूर की टहनी के रेशे का, जो सुर्ख सोने की है। मैंने कहा, हाँ वाकई ये तो दुनिया के लिबास और जेवरात और दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मुझे याद है मेरी शादी का दुपट्टा था इस कदर वजनी कि मेरा सर दर्द करने लगा था और लहंगा पहन के तो चलना मुश्किल हो गया था। वही जोड़ा जो मैंने इतना महंगा बनवाया था, चंद घंटे पहनने के बाद मेरी तबीयत उससे बेजार हो गई थी। यूं लगता था कोई बोझ है जिसको जल्दी उतार फेंको। मेरी खात्मा कहने लगी, आपके ये कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे। मैंने हैरत से कहा, अच्छा तो क्या मैं हमेशा यही कपड़े पहने रखूंगी? वो सब हंस ली, बोली, अरे नहीं, जब जी चाहे ये कपड़े बदल जाएंगे और इनकी जगह 70 और जोड़े आ जाएंगे, जिनको ना धोने का झंझट, ना इस्त्री करने का, ना संभालने का। मैंने कहा, ये तो बहुत ही मज़े की बात है। वो सब मिलकर मुझे ऐसे सजा रही थी जैसे किसी दुल्हन को तैयार किया जाता है। मेरे सामने थाल में तरह तरह के जेवरात थे जो जगमग कर रहे थे। एक एक कंगन की चमक ऐसी थी कि अगर सूरज के सामने दिखा दिया जाए तो दुनिया का सूरज तो मांद ही पड़ जाए। अगर अल्लाह ताला मुझे ताकत ना दे तो शायद मेरी बीनाई जाती रही, इस कदर जगमगाते जेवरात थे। मैं शौक से एक एक जेवर को उठा उठा के देख रही थी। जेवरात का तो मुझे बचपन से बड़ा शौक था। छोटी भी थी तो अम्मी के कानों में पड़े बुंदों से खेलती रहती थी, कभी उनकी चूड़ियां पहने फिरती थी। मेरी खादमाएं सब मिलके मुझे जेवर पहना रही थी, मुझे तैयार कर रही थी, एक मेरे बाल संवार रही थी। और मेरे जेवर इतने सारे थे, मैं सोच रही थी ये सब जेवर कहाँ तक पहनूंगी। वो बोली, जहां तक आपके वुजू का पानी जाता था वहां तक आप जेवर पहनेंगी। इन जेवरात में ऐसे ऐसे मोती थे कि दुनिया के कोहे नूर हीरे से भी ज्यादा बेशकीमत। सारी दुनिया की दौलत भी कोई लुटा दे तो ये मोती हासिल नहीं कर सकता। मैंने बड़े बड़े ज्वेलर्स के शो केसेस में पड़े जेवरात देखे थे, बहुत सारे मैगजीन देखती रहती थी जेवरात के, मगर ना ऐसे डिजाइन कभी देखे, ना ऐसे कीमती जेवरात। कहीं सोने के, कहीं जुड़ाव मोतियों के, कहीं चांदी के। आखिर में मेरी खादमाओं ने मेरे सर पर ताज रख दिया। मैं तो वाकई किसी बड़ी सल्तनत की मलका लग रही थी। हाय मेरे अल्लाह, हमने किन कामों में जिंदगियां लुटा दी, और तूने हमारे लिए यहाँ क्या क्या तैयार किया हुआ था। काश हमें उस वक्त समझ आ जाती तो एक पल भी तेरे जिक्र में कभी कोताही ना करते। हम तुझसे कितनी मोहब्बत करते, हम तुझ पर फिर कितने कुर्बान होते। मैं इन्हीं ख्यालात में थी कि एक खादिम हाजिर हुआ और बोला, आपके लिए पैगाम है कि आप अपने किस शौहर के साथ रहना पसंद करेंगी, पहले वाले या दूसरे वाले। अल्लाह ताला आपको वही अता करेगा जिसमें आपकी खुशी होगी। मैं तो खुशी से उछल गई। मेरे पहले शौहर मेरे साथ बहुत शफीक और मेहरबान थे। उनके इंतकाल के बाद अब्बा ने मेरी शादी एक कदरे उधेड़ उम्र शख्स से कर दी थी, जिसने मुझे बहुत रुलाया। मुझे जहनी तौर पर इस कदर अजियत में रखता था। मैंने बगैर सोचे समझे झट से कहा, मुझे मेरे पहले शौहर ही चाहिए। वो बाअदब हाथ बांधे खड़ा था, मेरा जवाब सुन के पलट के चला गया। मेरी खादमाएं कहने लगी, आपके तो और भी महल हैं, और ऐसे ऐसे दिलकश नज़ारे, ऐसे हसीन मनाजिर हैं जो आपके मुंतजर हैं, उनकी तरफ भी तो चलें। मैं हंस दी, अरे हाँ, मैं तो जिधर जाती हूँ उधर ही खो जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि कहीं और भी कोई जगह है। इतने में मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए। मेरी जिंदगी की बहार, मेरी पहली मोहब्बत, उनको देखते ही मैं वालेहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी, उनके गले लग गई। उनके बाद मैंने जिंदगी के बहुत सख्त दिन देखे थे, वो भी मुझे देख के इतने ही खुश हुए। वो शादी के दिन से भी ज्यादा जवान थे और हसीन थे। यूं लगता ही नहीं था ये वही अहमद है, ये तो कोई बादशाह सलामत लग रहे थे। हम एक दूसरे से को देखकर हंसने लगे। सारा महल हमारे कहकहों से गूंज उठा। वो मेरे हुस्न से इस कदर मुतासिर हुए कि यूं लगता था उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं पा रही, और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। दुनिया में उनको लुभाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे कैसा हुस्न दे दिया और उनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। हम जहां एक दूसरे को देखकर खुश हुए, वहां अल्हम्दुलिल्लाह का तराना हम दोनों की जुबान पे जारी था। वो मेरे हाथ में हाथ डाले, बड़ी मोहब्बत से मुझे अपने साथ लेकर महल से बाहर निकलने लगे। तो मुझे याद आया, हाय मेरा अबाया, मेरा नकाब। अहमद हंस दिए, कहने लगे, यहाँ किसी अबाया और नकाब की जरूरत नहीं, ये जन्नत है। वो सब तो दुनिया के लिए था, ताकि बुरी नजरों से औरत को बचाया जाए। यहाँ कोई बुरी नजरों वाला है ही नहीं। हम चलते जा रहे थे और बहुत सी बातें थी जो करने वाली थी। यहाँ तक आज की किस्त मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि वो कौन सी बातें थी जो उन्होंने की।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.